ये कृष्ण के खास कमरे के लोग हैं, बहुत इस तरह से रुचि आई। और रुचि आने पर अब अधिक कष्ट नहीं होगा, अब रास्ते पर गाड़ी आ गई, लाइन पर अब गाड़ी आ गई, अनायासी गाड़ी चलने लगेगी, किंतु अभी रफ्तार तेज नहीं है, किंतु दिशा ठीक हो गया है और गाड़ी चलने लगी, किंतु धीमे धीमे चल रही। और उसका रफ्तार बनाने के लिए वही तादेर चरणों से भी भक्त सनेवास, ऐसे भक्तों का संग किया गया। अब रूप गोस्वामी को कहाँ से खोजेंगे, सनातन गोस्वामी कहाँ भी मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उज्ज्वल दिन मणि ग्रंथ में, भक्ति गोस्वामी सिंधु में और अपने ग्रंथों में मिलेंगे, किंतु मिलेंगे, किंतु चाबी एक किसी के पास में है, ऐसे रसिक वैष्णवों के हाथ में, अनुभवी वैष्णवों के हाथ में, तो उनके माध्यम से ये सब चीज़ें यदि हम देखेंगे सुनेंगे तो ये रुचि बढ़ करके आसक्ति हो जाएगी। अब साधन भजन से रुचि हटकर रुचि रहेगी और साथ साथ में कृष्ण के प्रति भी हो गई, ब्रजवासियों के प्रति रुचि हो गई, आसक्ति आई। यह आसक्ति हो जाना तो बस बहुत, अब निकट पहुंच गए, अब पतन की संभावना बहुत कम रह गई रुचि से, जबकि गाढ़ रुचि का नाम ही आसक्ति है। रुचि बुद्धिपूर्वक
है, रुचि साधन में थी,
हाँ साधन,
और आसक्ति ने
भजनीय के प्रति चली गई, कृष्ण में चली गई। इसके बाद किसको खोजती है, भजने के प्रति गई, और यही इसी के बाद में जब परिपक्व हो जाएगा तब आएगा भाव। हम लोग अभी भावावस्था की बात कर रहे थे, आसक्ति तक हमने बतलाया, आसक्ति का बतलाया, जिस व्यक्ति को आसक्ति हो गई उसका अंतर लक्षण वर्णन करना बहुत कठिन है, वो वर्णन नहीं किया जाए, कैसे कैसे भाव और तरंगे उसमें उठती हैं ये तो बतलाना है। तब हाँ उसके जो तटस्थ कुछ लक्षण हैं, गौण लक्षण हैं, उसको ये बतलाया जा सकता है। वो क्या है, जिसको ऐसा ऐसी आसक्ति उत्पन्न हो गई वो ढूंढता फिरता है, कुछ खोया खोया सा रहेगा, किसी को देखा एक तिलक लगाए, फिर गले में माला सुंदर तुलसी की, आंखों से कुछ आंसू छलक से रहे हैं, और उनके सामने में आया, देखते ही जिसको आसक्ति हुई है झट उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, महाराज महात्मन आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, वृंदावन में कहाँ से आ रहे हैं आप। महात्मा जी ने इनका भाव देखा, वो भी बैठ गए, ये भी बैठ गए, चर्चा छेड़ने लगी, कहाँ से आ रहे, वृंदावन में कौन सा स्थान से आ रहे हैं, बेटा जानता है वृंदावन का कहीं जो कोई कोई स्थान, तो कुछ कुछ सुना है, मैं वृंदावन में बंसीवट से आ रहा हूँ। हाँ आप राशस्थली से आ रहे हैं, पासी में जमुना जी बहती है, तो हाँ वहीं से बहती है, कल कल धनी से बहती है, सुंदर सुंदर कदम्ब के पेड़ है वहाँ, कदम्बों के पेड़ के नीचे मयूर नृत्य करते हैं, थिरकते हैं, तो हाँ, अरे पासी में सेवा कुंज है ना, जहाँ पर कृष्ण ने उनका पैर पर लौटा, हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ, हाँ मैं धन्य हो गया आपके दर्शन से। महात्मन आपके ये बगल में ये क्या चीज है, अरे इसी को श्रीमद् भागवत में मैं इसी का कभी कभी पाठ कर लेता हूँ। अच्छा और गले में क्या है, ये कुछ लटक रही है चीज, तो इसमें सालक राम जी हमारे हैं, यही राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ, बिना पूजा किए हुए मैं रह नहीं सकता, एक प्रार्थना है आपके चरणों में, कहो बोलो, आप वृंदावन से आ रहे हैं, मालूम होता है जी आप भागवत के मर्मज्ञ कोई हैं, मेरी इच्छा है कि आप एक श्लोक कोई कह करके थोड़ी सी उसकी व्याख्या कर दें। तो सचमुच में उसको देखा उसका भाव, और कोई श्लोक याद है तो ना, हमको कोई याद नहीं है। मैं सुना है जो भागवत बहुत सुंदर है, आप उसमें कोई भी श्लोक की एक उच्चारण करके और उसकी आप थोड़ी सी संक्षेप में व्याख्या, और ये कर करके गदगद होकर के जब दबाई आंखों से उनकी तरफ में देखें, उन्होंने देखा ऊपर से नीचे देखकर कर ये अधिकारी कुछ है, विचार करके देखा, इसको कहने में कोई बात नहीं, तब उसके लिए कहना एक श्लोक कहे। हमको पिछले दिन हमने एक श्लोक कहा था, अखनतांग फलमिदम न परम विदा। उन्होंने आज जब भेंट हुई दूसरी बार तो उन्होंने कहा जैसे एक दूसरा श्लोक मैं बोलूं, तो उन्होंने दूसरा एक श्लोक बताया श्रीमद् भागवत। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम दीनचरानुगम श्रीनिकेतन फणफणार्पितं ते पदम्बुजं किणिकिचे सुनः क्रिंदिहित्सया। सुन करके गदगद हो गया, संस्कृत तो कुछ जानता ही था, ये भावु भक्त है, मैं तो कृतार्थ हो गया सुनते ही, किंतु इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दूं, तो वो व्याख्या कर रहे हैं जिसमें आसक्ति हुई है। अब वो तन मन लगा करके बड़ी सावधानी के साथ में रम गया उस कथा में और ये उसको सुनाने लगे। गैया के सुंदर बछड़ा अपना देख करके जब वो आया स्तन के पास में बछड़ा, तो मैया कैसी हो गई, दूध सब जितना उसके अंग अंग रोम रोम में था वो पिघल करके आकर के द्रवित होकर के स्तन में सब आ गया। दूसरा बछड़ा आया तो क्या करेगी, लात मार देगी और स्तन हजार चूसो वो एक बूंद दूध नहीं निकलेगा, उसने सब दूध एकदम छोड़ दिया। ऐसे वो महात्मा जी ब्रजवाले उसको इसका अर्थ समझाए। प्रणत देहिनां पाप कर, ये श्लोक कहाँ का है बतलाए, कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर गोपियां रोती हुई इस श्लोक को कह रही कर रही हैं, उनसे प्रार्थना करें। प्रणत देहिना, उन्होंने कहा अपने हाथों का स्पर्श हमारे सिर पर कर दीजिए। ये क्या कह रही है, कृष्ण कह रहे हैं ये क्या, मैं तो धर्म तो हमसे निकला है ना, मैं परम धर्मात्मा हूं करके ऐसा अनिति का कार्य मैं नहीं कर सकता। तुम दूसरों की स्त्रियां यहां पर आई है हमें दर्शन करने के लिए, और मैं धर्म का पूरा धर्म ही हमारा शरीर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये कभी नहीं। मैं तो देखना भी बुरा समझता हूं, पराई स्त्रियों को के तरफ में मत देखो। छोटे हरिदास ठाकुर जी ने एक वृद्ध महिला को देखा, महाप्रभु ने जीवन भर के लिए उसको बाहर कर दिया ना। स्त्रियों की अपेक्षा स्त्री संगी जो लोग व्यक्ति हैं उनको भी दर्शन मत करो, इस कामना बुद्धि से जो करते हैं। यदि कुछ कारण भी है देखने का बातचीत करने का भी, तो उसे अपनी मैया बहन और बेटी इतनी उम्र देखते हुए उससे बात करो, और एकांत में उसे हंस करके मत बोलो यदि कल्याण चाहते हैं। ऐसे स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति होना चाहिए ऐसा आदर्श। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ये विधान बनाया, मैं भला अपना हाथ रख दूं, ये कभी समझ। गोपियां कहते हैं कि हमको क्यों ठगते हो, आप तो बिना रखे रह ही नहीं सकते, रह नहीं सकते, हम तो आपको जानती हैं, तो हमको ठगने की ऐसी मत दीजिए। प्रणत देहिना, हम लोग जानती हैं, ऐसा संसार का कोई भी शास्त्र नहीं है प्रामाणिक शास्त्र जो कि ऐसा नहीं बतला रहा है। कैसा, प्रणत देहिनां पापकर्षण, एक व्यक्ति भगवान को नहीं मिला, भगवान को यहीं से शरणागत हो गया, कैसे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बस कहा प्रभो मैं आपका शरण, गजग्रह में युद्ध हो रहा था, जब उसका सब बल खत्म हो गया, वो गजेंद्र का, गजेंद्र माने हाथी, सब बल जब सब पूरा समाप्त हो गया, अब वो मरने मरने को हुआ, उसको पकड़ करके खींच करके कुंभीर ने माने मगर ने एकदम पानी के बीच में ले गया, नाक कान डूबो न लागे, त्राही हो करके पुकारी, हे गोविंद राकुशण अब तो जीवन है, हे गोविंद आपके बिना और कोई नहीं है, इधर प्राण भी निकल रहा है, अब धीरे 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 नाक कान बूढ़ो न लागे, कान में पानी जाएगा, इधर नाक में, इधर मुख में, अब श्वास लेने का अब कोई उपाय नहीं, बस मरने वाला। उस समय में देखा तो मर ही रहे, कमल का एक फूल लिया और उठा करके, हे प्रभो हे हरि आपके लिए समर्पित है ये हमारा प्राण है, ये पुष्प नहीं, बस जहाँ प्रभु थे द्वारका में रानियों के पास में थे, जूता नहीं खोजा, एकदम गरुड़ भी देखा जी बैठे हैं किंतु उनको चढ़ने का मौका नहीं मिला, एकदम मन के वेग से भी आगे वहां पर उपस्थित थे और उसकी रक्षा की। फिर क्या हुआ, उसका पाप सब दूर हो गया, जब पाप कब दूर हुआ, जब ही वो शरणागत हो गया तभी हो गया, मन से प्रणत देहिनां पाप, जो कोई भी पापी से पापी, अजामिल जैसे भी, जगाई मदाई से भी, सो मत कोई हो, कोई भी मत सो, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कोई भी सो मत, बहुत दुर्लभ कथाएं हो रही, ऐसा तन करके बैठो जो नींद फटकने ना आए, आलस्य नहीं आए, इसलिए सीधा बैठने की, ऐसे तन करके, अन्य करने के समय में ऐसे बैठो, पूजा करने के समय में ऐसे भैया नींद तक नहीं आए, आलस्य प्रमाद नहीं आए, मन थोड़ा ऐसा हो जाएगा बस नींद आ जाए, पकड़ लेगा वो, एक करोड़ मन का पत्थर इस पर चढ़ जाएगा, फिर आंख उठेगी नहीं, इसलिए खूब सावधानी से, मैं अपने साधन भजन का फल बतला रहा हूँ, ये दे रहा हूँ जिसको लेना है लो, और नहीं तो सोना है तो सो जाओ। तो प्रणत दे ही ना, समस्त शास्त्र कहते हैं यदि मन वचन से ही वो प्रणत हो गया, प्रणत माने शरणागत हो गया, उसके सारे पाप बह जाते हैं, धुल जाते हैं, और हम आपके निकट में आई और आप अपना सिर रख देंगे, सिर रख देंगे, आप ये हटा करके रख दो तो पाप रहेंगे, जिसके मन वाणी के द्वारा शरणागत होने से ही पाप दूर हो जाता है, भला कृष्ण के चरणों के स्पर्श से या हाथ के स्पर्श से पाप रहेंगे, इसलिए हमें आप मत बहकाइए, प्रणत देहि नाम, इसलिए खूब स्वच्छंद गति से हमारे सिर पर हाथ रखिए, नहीं इसे भी हम संतुष्ट नहीं, आप अपने श्री चरण कमल को भी, कौन से कमल, जिसके शरणागत होने से उसके पाप दूर हो जाते हैं, यदि कोई भगवान के चरण कमलों में कोई भी शरणागत हो, बस ऐसे चरण कमलों को हमारे अंगों पर धारण कीजिए, ऐसा कभी मत बोलना मैं ऐसा पाप का भागी नहीं बनूंगा, और यदि ऐसा कहते हैं तो ये ठीक भी है, हो सकता है जे प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, तो फिर भी ऐसा नहीं, पाप के डर से नहीं, किस लिए, हमारे चरण जो हैं अत्यंत सुकोमल हैं, मैं पाप से नहीं डरता, वो तो हो जाएगा ऐसे ही, किंतु अपने चरण कमलों को, हमारे चरण कमल कैसे हैं, कमल पुष्प से भी अधिक कोमल हैं, भला तुम्हारे कठोर अंगों पर मैं अपने चरण रखूं, ये संभव पर नहीं है, हमारे चरण कमल में तुम्हारे अंग लग करके कष्ट हुआ, फिर बहका रहे हैं ना, तृणचरानुगम, जब तृणचर कौन है, तृणों को कौन चरने वाली है, गाय, इसलिए तृणचरा, तृणचरा गाय है, तृणचरानुगम आप उनके अनुगामी हैं, गाय जब तृण चरने के लिए चलती हैं तो कोमल कमल घासें के ऊपर में ही चलती हैं। कहाँ चलती हैं? कहीं पत्थर पर, कंकड़ पर, कहीं कांटों पर, विशेष करके कांटे जहाँ रहते हैं वहीं पर घासें होती हैं, क्योंकि दूसरी घासें वहाँ खाने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर आती हैं। वहाँ पर घासें सुंदर कोमल होती, इधर भी दौड़ती है, और कभी कभी वो भगती हैं, तो जब भगती हैं तो सीधे रास्ते से भगती हैं। और रास्ता कैसा है वहाँ का? गोवर्धन के तराई में गोवर्धन पहाड़ है, उसके ऊपर में चढ़ रही, वहाँ पर कृष्ण के चरण कैसे कोमल कोमल किसी गलीचे पर चल रहे हैं ना क्या, तो वो गलीचे से भी कोमल गोपियों का आंगन ही है। हमारा आप तीनों के ऊपर में चल सकते हैं, कंकड़ियों के ऊपर में चल सकते हैं, गायों के पीछे पीछे भग सकते हैं। कहने का तात्पर्य आपकी बुद्धि गाय जैसे तो नहीं है, गाय को चराने वाले की बुद्धि कैसी होती है चरवाहे की? इसलिए हमारे प्रेम को नहीं समझ रहे, इसलिए उनसे दिलगी भी कर रही हैं। उनको अधिकार है, हम लोगों को अधिकार नहीं है। त्रिचर माने गायों को चरवाहा जब होता है उसकी बुद्धि कैसी होगी? गाय जैसे इधर उधर चलती है, उनको कोई यह नहीं कहाँ गिर जाएंगी, कहाँ पर कांटा आएगा, कहाँ पर कुछ होगा, तो उसको चराने वाला भी ऐसा ही होगा। इसलिए कोमल चीज को भी वो कठोर समझ रहा है, कठोर चीज को कोमल। इसलिए तृणचरानुगम, तृणचर आपके चरण कमल कैसे हैं? तृणचरा अर्थात तो गाय है, उसके पीछे पीछे चल लेना है। दूसरा एक और है इसका आता तृणचरानुगम, गाय तृणचरा है ना, ये गाय है कौन? वेद की ऋचाएं हैं। ये वेद की ऋचाएं कैसी? उसको कृष्ण ही पुष्ट करते हैं गाय के रूप में। ये जितनी भी गायें हैं वो कौन है? वेद की एक एक से अद्भुत अद्भुत ऋचाएं हैं, बहुत तपस्या करने के बाद में गाय हैं, उन गायों को ये पालन पोषण करने वाले हैं। ऐसे चरणों से चल करके जो खाली पैर उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, वो हमारे सिर पर, हमारे श्रीअंगों पर अपने उस चरण को रखें। कृष्ण ने कहा जी ये कभी नहीं हो सकता है, मैं कोमलता के लिए थोड़े कह रहा था। सीने के तनम, आपके जो चरण कमल हैं श्री के निकेतन हैं। श्री के निकेतन मैंने क्या? लक्ष्मी जी के निकेतन है। श्री मैंने एक शोभा भी होता है, अत्यंत सुगंधित, अत्यंत कोमल, अत्यंत सुशोभा मैंने अत्यंत सुशोभित, सौंदर्य बाधुर्य सबसे परिमंडित, उसको कहते हैं श्री। और लक्ष्मी जी उसकी पूर्ण अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए श्री श्री ने कहता ना चरण कमल अत्यंत सुंदर हैं, कमल से भी अधिक उसमें सुगंधित है, सुगंध है उसमें, माधुर्य है, कोमलता है उसमें, सरसता है, और उसमें ठंडापन भी, शीतलता भी है, जो कमल में सब गुण नहीं है उससे भी अधिक गुण कृष्ण के चरण कमलों में है। श्री ने कहता ना, श्री का तो वो घर है। कैसे घर? अपने गोदी में वो लक्ष्मी जी कृष्ण के चरणों को पलोट रही है। इसलिए कहते हैं यदि लक्ष्मी जी जो हैं पतिव्रता, वो आपकी पत्नी थोड़े हैं, यदि उनके गोदी में अपने चरण कमल को रख सकते हैं तो हमारे अंगों पर रखने में आपको क्या आपत्ति है? अच्छा, आप जैसे गोपी उनके लक्ष्मी जी के चरण ये गोदी में आप अपने पैरों को रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, इतना तो अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हम भी आपकी पत्नी नहीं है, वो भी आपकी पत्नी नहीं है, इसलिए तो हम लोगों का अधिकार है। नहीं ऐसा नहीं। निकेतन कहने का एक और तात्पर्य है, गोपियों ने कृष्ण से कहा श्री निकेतन, लक्ष्मी जी अपने अंक में सब समय उनको पकड़ करके रखते हैं, इसलिए कि वो चरण कहीं दूसरी जगह न चला जाए। ये कभी कभी चला जाता है, कभी लक्ष्मी जी को छोड़ करके बामन रूप धारण करके बलि की सभा में गए उनको छलना करने के लिए और उनको बहकाने के लिए, उनका सर्वस्व लेने के लिए तीन पग भूमि मांगी। मांगे तो छोटे होकर के बामन के रूप में, किंतु जब लेने लगे तो बढ़ाया पैर, इतना बढ़ाया कि त्रिविक्रम बन गए और एक ही पैर में समस्त पृथ्वी भूमंडल को, ब्रह्मांड को माप लिया और दूसरे से 14 भुवनों को माप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए जगह मांगा, तो वो बड़े चतुर थे, उन्होंने अपने को ही उनको दे दिया, चलो मैं ही आपको दे देता हूँ, भूमंडल का राज्य इत्यादि सब कुछ दे दिया, ब्रह्मांड का राज्य भी उनको दे दिया और अपने भी उनको दे दिया। जब दे दिया तो कहा जी अब वर मांगो। वाह बहुत ठीक, आप मैं जहां आप मैं रहूंगा उसी हमारे राजभवन में आप प्रत्येक जितने भी द्वार हैं वो वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। मैं जब जाऊं तब आपका दर्शन करके जाऊं, जब लौटूं तब आपका दर्शन करके आऊं। मैं कब जाऊंगा कब लौटूंगा कोई ठीक नहीं, रात में दिन में कभी भी
किसी दरवाजे से।
तो इसका मतलब ये सब दरवाजों पर आप खड़े रहें, दरबान हमारा बन करके रहिए। बस प्रभु को दरबान बना लिया और 24 घंटा ड्यूटी देनी पड़ेगी, कब किस रास्ते से कब निकले और कब आ जाए। दरबान बन गए, एक वर्ष हो गया, दो वर्ष हो गया, करते करते बहुत दिन हो गए, अब लौटे नहीं। लक्ष्मी जी कहा जैसे वो कहा था जी अभी आ जाएंगे, तो लौटे नहीं, कहाँ गए। अब जब विचलित होने लगी तो नारद जी मिले। नारद जी ने कहा जी मैया आप इतनी चिंतित क्यों दिख रहे हैं। तो चिंतित इसलिए देख रहा हूँ, ये तुम्हारे पिताजी गए और इतना दिन हो गया लौटे नहीं। तो हंसने लगे, कहा जी हंस लिए, किस लिए हंस रहे। तो वो गए थे ठगने के लिए किंतु ठग गए खूब। ये गए थे उसकी संपत्ति लेने के लिए, उसको उन्होंने दरबान बना दिया अपना 24 घंटे के लिए, इसलिए वो नहीं आया। फिर क्या करूं कैसे लौटेंगे। तो उन्होंने उनको कुछ बतला दिया, बस उन्होंने गरीब ब्राह्मणी का वेश बनाया और फिर वही बलि महाराज जी के दरबार में गई, जहाँ जिस दरबार में वो पहले पहुँचे थे। देखा जी वो सबको दे रहे हैं सब कुछ, बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और ये सबसे पीछे में बैठ गई, ऐसी तेजस्वी जिस उनका मन पहले ही से एकदम आकर्षित कर दिया। ये कौन लड़की है, महिला कौन है, इतनी सुंदरी साधारण रूप में दरिद्र जैसी बैठी हुई है, किंतु दरिद्र मालूम नहीं होता है। सबको जब दे लिया तब देवी को प्रणाम करके बुलाया, आप क्या चाहती हैं। कुछ नहीं बोली, बतलाइए आप क्या चाहती हैं, तभी नहीं बोली। फिर बोले जी आप बतलाइए तो आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं कुछ प्रार्थना लिए आपके पास में आई, आप सहज रूप में बतलाइए मैं उसको दे दूंगा, परिपूर्ण कर दूंगा। आप संकल्प लीजिए, संकल्प माने क्या, यदि संकल्प लेकर के फिर यदि उस बात को पूरी नहीं की जाए तो उसको महापाप होता है, इसलिए संकल्प लीजिए। जैसे कि ये पहले उन्होंने कराया था ना संकल्प, वैसे ये संकल्प। उन्होंने कहा जी ये कौन है फिर ये संकल्प की बात आई, कोई ठग तो नहीं। फिर भी कहा जी आप वचन तो दे चुका है, अच्छा मैं संकल्प कर लेता हूँ जो मैं देना। तो उन्होंने हाथ से ऐसे दिखलाया मैं उनको चाहती हूँ। वो कौन है, वो हमारे पति हैं, आपने उनको छल करके यहाँ पर रख लिया है, उनके बिना मैं रह नहीं सकता, इसलिए आप मुझको यही दान दीजिए, हमको हमारा पति आप लौटा दो। हंसने लगे, हंस कर बोले अच्छा। उनको बोले जैसे आप बद्ध, आप हमारे यहाँ वचन दे चुके हैं, वचनबद्ध हैं देने के लिए कुछ, अब इस समय आप ऐसा कीजिए अपने एक स्वरूप से हमारे यहाँ ऐसे दरबान बने रही, और लक्ष्मी जी हमसे ये मांगा इनकी बात भी पूरी होनी चाहिए, एक स्वरूप से वहाँ पर आप जाइए। प्रभु भी मुस्कुरा दिए, एक स्वरूप से उनके पास में चले गए, एक स्वरूप से उनके पास में। तब से लक्ष्मी जी उनको ले करके गई और तब से चरण कमल सब समय पकड़ करके बड़ी सावधानी से रखते कहीं फिर नहीं चले जाए, इनका तो बदअभ्यास है इधर उधर डोलने का, इसलिए उसको पकड़ कर चरण क्या श्री निकेतन, ये इसका जो श्री के निकेतन है वो चरण कमल हमारे अंगों पर हमारे वस्तक्षल पर आप धारण करें। नहीं नहीं देखो मैं इसे भी नहीं डरता, ये ठीक है जैसे लक्ष्मी जी हैं तुम भी हो, तुम अपने गोदी में हमारे पैरों को रख सकते, किंतु नहीं क्यों हमारे पैर जल जाएंगे, हमारे बड़े पैर कोमल हैं, तुम्हारे यहाँ तो ये जल रहा है ना, ताप है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ताप होता है, जब देखो शरीर में कुछ ना कुछ, मैं उस ताप को सह, हमारे पैर नहीं सह सकते हैं, फफोले पड़ जाएंगे, फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए नहीं रखूंगा। तो उसी के उत्तर में करता रही है, फण फणार्पितम ते पदम। फण फणी, जिसको फण होता है वो कौन कहलाता है? सर। आप कालिए के ऊपर में अपने पैरों से थिरक करके नाच सकते हैं और कितने देर तक, और आपको ताप नहीं लगा, और हमारे अंगों पर आपके चरणों को रखने से ही आपको ताप लग जाएगा, आपको फफोले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इस तरह से फण फण अर्पितम, आप तो विश्व ब्रह्मांड के ताप को हरण करने वाले हैं। कैसे? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभीरीडितम कल्मषापहम। ये ताप को हरण करने वाले हैं, आपका नाम से ही सब जगत का ताप दूर चला जाता है, जितने प्रकार के ताप हैं त्रिताप सब दूर हो जाते हैं आपके नाम के स्मरण मात्र से। साधकों के ही हो जाते हैं तो सिद्धों की तो बात है। अब संकोच मत कीजिए, आप ऐसे चरण कमल को, वो जो सुन रहा था कौन, अब फिर वहां लौटिए। वो जिसको आसक्ति हुई है किसमें? कृष्ण के कथाओं में अभी आ सकती है, कृष्ण के चरणों में आ सकती है, वो एकदम लौट गया उनके चरणों में। मैं कृतार्थ हो गया भागवत का श्लोक सुनकर। मैं जन्म जन्मांतर ये चाहता कि ऐसे वैष्णवों का संग हमें मिले और ऐसी हरि कथा मिले। अब इसके बाद नहीं, उसके भी बहुत से लक्षण हैं। पहला लक्षण हमने इसको बताया, आज यहीं तक समाप्त रहे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। 9:30 बज चुका है।
नित्यानंदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरम। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं।
हम लोग माधुर्य कादंबनी का पाठ कर रहे हैं। कल हमने बतलाया था, आसक्ति जिसको हो जाती है भगवान के नाम में, उनकी कैसी स्थिति हो जाती है। ये बतला रहा था, ये आसक्ति होने पर बाहरी रूप में उसके क्या लक्षण होते हैं, भीतरी लक्षण का वर्णन नहीं किया जा सकता। भीतर में क्या उसको होता है वो तो वही जानेगा जो कि जिसको हो रहा है, किंतु बाहर से ऐसा देखा जाता है। श्रीमद् भागवत के कथाओं का वो अर्थ सुन करके एकदम द्रवित हो गया, रोम रोम उसका खिल उठा और फिर आगे बढ़ गया। देखा साधुओं का समाज जुड़ा हुआ है, परस्पर हरि कथा चल रही है, एक दूसरे को वो प्रणाम कर रहे हैं, अब बड़े प्रेम से कथा परस्पर सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अब प्रेम पूर्वक उनका व्यवहार देखा। देखते ही एकदम विभावित हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। इन महात्माओं का दर्शन किया जिसके बहुत दिनों से मेरी लालसा लग रही थी, उनका मैंने दर्शन किया। एक एक वैष्णव बड़म बड़े बड़े तत्वों को जानने वाले और भगवान की कथा में रुचि लेने वाले, प्रेम में भी भोर रह रहे हैं, उन लोगों को बहुत दूर से साष्टांग प्रणाम किया। देखते ही जहाँ से देखा बस दंडवत प्रणाम किया। और उसमें जो सभा में जो सबसे श्रेष्ठ थे, सबके गुरु हैं, उनके पास जाने से, उनको प्रणाम करने से उन्होंने प्रणाम ही नहीं करने दिया। उन्होंने क्या किया, झट उसे लेकर के और गले से लगा दिया। संत लोग ऐसा ही करते हैं। अरे वाह, मैंने आज ऐसा साधुओं का मैंने दर्शन जीवन में नहीं किया। हे भाव रोग के रोग को दूर करने वाले महात्मा, आप लोगों के पास में भाव रोग की अचूक औषधि है। आप लोग वैद्य शिरोमणि हैं, जरा मेरे रोग की परीक्षा तो करेंगे, मुझे क्या हो गया, मुझको कौन सा रोग लग गया। आप कृपा करके हमको इस रोग को हमारा छुड़ा दीजिए। ऐसी कोई औषध दें रोग को भी दूर करे और पथ्य का भी काम करे। दूध बहुत से रोगों में औषधि का भी काम करता है और पथ्य का भी काम करता है। मिश्री भी ऐसे ही पीलिया इत्यादि रोगों में औषधि का भी काम करता है और ये पुष्टिकारक भी है। ऐसा भाव रोग के लिए कौन सी ऐसी दवा है अचूक महाऔषधि है, जो कि दवा भी है और उसके लिए पथ्य भी है। क्या क्या है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, ये सभी चीज़ें हैं, भगवत संबंधित जितनी चीज़ें हैं। किंतु ख्याल रखेंगे एक चीज़ का, भक्ति के नाम पर कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं जो भक्ति नहीं है। इसको समझने के लिए मैंने एक बात और पहले भी बतला, एक स्वरूप सिद्धा भक्ति होती है, एक होती है आरोप सिद्धा और एक संग सिद्धा होती है। अब इसको यह समझिए, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं, एकदम स्वरूपतः वो भक्ति है, जाने और न जाने भगवान का संकीर्तन करें, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं सुने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात्मनिवेदन, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है। कोई जान करके करे, अनजान में करे, वो उसकी भगवान उसे प्रसन्न हो, कुछ दिन करने पर उसे प्रेम होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। कैसे, इसको उदाहरण देकर के इन्होंने समझाया है। पहले कोई कोई संग सिद्धा है और कोई कोई आरोप सिद्धा है। आरोप सिद्धा माने आरोप करते हैं, सरोवर बनवाना, बगीचा लगाना, फूल की सेवा करना, ये सब बगीचे ठीक करना, गायों को रखना, उसका दूध दुह करके और सब बिक्री करना, व्यवसाय करना, या फिर उसको सेवा में लगाना, या ऐसी चीज़ें जितने भी हैं, इसको ये भी ले सकते हैं, जैसे पुस्तक बेचना, ये सब चीज़ क्या है, ये भक्ति डायरेक्ट है कि नहीं। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो है ये भगवत संबंधी यही है। जो चीज़ स्वरूप सिद्धा नहीं है किंतु भक्ति के संग से भक्ति ही मानी जाती है, उसको कहते हैं संग सिद्धा। आरोप है, भक्ति नहीं है, किंतु उसमें आरोप करते हैं। जैसे ग्रंथ हैं छपे, भागवत गीता इत्यादि, उसको हम बांट रहे हैं। वही पुस्तक बुक सेलर भी बिक रहा है, हम भी बेच रहे हैं। भक्ति है कि नहीं है, क्या है? ये आरोप कर रहे हैं जो भक्ति है किंतु भक्ति नहीं है। बहुत से लोग इसी को यदि मान लिया है जो भक्ति है तो जीवन भर वही व्यक्ति रहे, घर बार छोड़ दो, घर बार छोड़ दिया और वही काम करते रहो। जाओ कहीं से पुस्तक ले आओ, गीता छपी हुई, भागवत ले आओ और उसको बेचते आओ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसे भक्ति होगी कि नहीं? ये सर्व सिद्धा नहीं है। ये क्या हुआ? आरोप किया गया। यदि सचमुच में कोई ऐसा महापुरुष हो जो भगवान की वाणी को प्रचार करना चाहता है और वो किसी को स्फूर्ति दे करके इस काम में नियुक्त करे, तो उसको कुछ आंशिक रूप में भक्ति होगी। जैसे मूल प्रचारक कौन है? जो हरि कथा को देता है, हरि कथा श्रवण कीर्तन स्मरण। जैसे हम स्वामी जी को ही ले लें, वो तो मूल प्रचारक है ना, वो तो ठीक है, जब तक हैं तब तक लगा रहे हैं, तब तक तो कुछ उसका इसमें आ गया। भक्ति नहीं है पुस्तकों का बेचना या और काम करना। जैसे लाइफ मेंबर है, कहीं लिखा है ये भक्ति है, किंतु लाइफ मेंबर करके उस महापुरुष को यदि वो दे दिया जाए, उसके द्वारा जगत का कल्याण करेंगे, तब तो आंशिक रूप में काम कर वो भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। और नहीं तो वही कर करके अपना बैलेंस भी कुछ बनाएगा, कुछ उनको उनको 80% दिया, 20% अपने पॉकेट में रहे, ये भक्ति हुई? उसे गिरने का डर है। उसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं स्वरूप सिद्धा नहीं है, किंतु कुछ कुछ भक्ति में सहायक हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के लिए इन्होंने समझाया, एक आदमी यज्ञ करने गया, भाई आम का पत्ता ले आना तो क्या होगा, उसमें बंधन बार बनाएंगे, यज्ञशाला उसमें निर्माण होगा, फूल ले आना उसका हार बनाएंगे, दरवाजों पर लगा देंगे, ईंट ले आना उसे वेदी बनाएंगे और उसमें हवन किया जाएगा, लकड़ी ले आना, घी ले आना, जौ तिल ये सब चीज़ें ले आना। ये लाना यज्ञ है कि नहीं? ईंट लाना, पत्ता लाना, ईंट की वेदी बनाना, यज्ञ किसको कहते हैं? ओम कृष्णाय स्वाहा, ये कृष्ण के लिए मैं स्वाहा अर्पण करता हूँ। किसको? देखने में घी लगता है किंतु घी नहीं, अपने को स्वाहा करता हूँ, अर्पण करता हूँ। किसको? कृष्णाय, कृष्ण के लिए। ये यथार्थतः यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु। किंतु जो उसके लिए सामान ला रहा है, लकड़ी ला रहा है, घी ला रहा है, उसको का क्या कहा जाएगा? यदि उससे यज्ञ होगा जो ला रहा है, तो उसमें कुछ सहयोग हुआ थोड़ा सा, यज्ञ का थोड़ा सा तैयारी में कुछ उसको सहयोग देने का जो फल है थोड़ा सा प्राप्त हुआ, किंतु वो यज्ञ नहीं है। यदि ये सब चीज़ों को ला करके भी स्वाहा नहीं किया अपने को, तो यज्ञ होगा? नहीं। इसी तरह से कोई बच्चा गया इसको पढ़ने के लिए, नाम लिखवा दिया, टीचर ने कहा जी इसको एक लाल पुस्तक इमली वाली है ना, और ई माने इमली और माने आम, वो पुस्तक खरीद ले आना। बच्चा छोटा सा पुस्तक रंगीन देखा, उसमें फोटो देखा, वाह बहुत सुंदर है पुस्तक, स्कूल गया, सवेरे लौट करके आया, कहा जैसे हमारे मास्टर साहब ने हमको बड़ा पीट ठोका, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। दो तीन दिन ऐसा गया आया, केवल गया आया, ये शिक्षा आरंभ हुई कि नहीं? विद्यालय में आना जाना ही शिक्षा है? नहीं, किंतु ग्राउंड तो है नहीं। आते जाते तब फिर धीरे 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 उसका लिखना पढ़ना आरंभ हुआ, किंतु अभी यदि वैसा ही केवल आता जाता रहा और 10 वर्ष तक तो क्या होगा, मूल उद्देश्य पर उसको ले जाना है। तो ये सब चीजें जो है ये आरोप सिद्धा है। हमको आरोप सिद्धा में गुरु वैष्णव ला रहे हैं किस लिए, आरोप सिद्धा से संघ सिद्धा, संघ सिद्धा से स्वरूप सिद्धा में ले आएंगे। यदि उन्होंने नहीं किया और आरोप सिद्धा में ही लगा दिया हमारा जीवन भर और संघ सिद्धा में हमारा जीवन चौपट कर दिया, तो वो न तो गुरु है न तो ये शिष्य है, दोनों का कोई भी परमार्थ नहीं होगा। किंतु कुशल जो गुरु होते हैं वो पहले ले आएंगे संघ सिद्धा में, कि आरोप सिद्धा में, फिर संघ सिद्धा में, धीरे धीरे लेकर के स्वरूप सिद्धा में। कहिए अब देखो, अब तुम हरिनाम करना, कृष्ण में प्रेम हो, बस ये तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसको लेकर के आगे बढ़ो। सब समय कीर्तन करना, सब समय भागवत इत्यादि ग्रंथों का पाठन पठन करना, सब समय हरे कृष्ण करना। किंतु यही नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में प्रेम आना चाहिए। यदि प्रेम नहीं आया कृष्ण के प्रति में, तो ये कीर्तन कोटि कोटि जन्म में कर करके भी तुम्हारा लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ होगा? उससे तुमको धन मिल जाएगा, सांसारिक चीजें मिलेगी, मुक्ति भी मिल जाएगा, ऐसे प्रयास। किंतु उस श्रवण कीर्तन वो भी अभी शुद्ध नहीं है, किंतु है स्वरूप सिद्ध है, उसके द्वारा धन जन ये सब मिल रहा है। इतने खूब सावधानी के साथ में संग सिद्धा किसको होता है समझिए। भक्ति के संग में यदि स्वरूप सिद्धा के साथ में है, श्रवण कीर्तन के साथ में, तो वो भक्ति है। और यदि अलग हो गई, संग भक्ति के साथ में नहीं है, तो वो चीज़ें भक्ति से कोई संबंध नहीं। एक आदमी बहुत ही दयालु है, बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही दीनहीन नम्र है, मधुर भाषी है, ये भक्ति है? ये तो अद्वैतवादी भी संसार के कर्मठ लोग जो हैं, ये संसार के सभी लोग हो सकते हैं। हाँ, यदि भक्ति के साथ में ये गुण हो तो उसको भी भक्ति कहा जाएगा। किंतु भक्ति को छोड़ करके यदि ये सब जो गुण है, त्रिनादपि सुनीच, तरोरपि सहिष्णु, अमानी, मानद, उपकारी, सत्य बोलना, ये भक्ति के संग में तो भक्ति जैसा है, किंतु फिर भी शुद्ध भक्ति स्वरूप सिद्धा नहीं। स्वरूप सिद्धा एक मूर्ख जाहिल आदमी भी, एक कुपात्र भी, एक व्यभिचारी व्यक्ति, एक डकैत, लंपट, बदमाश, जुआ चोर भी रहे और वो श्रवण करेगा ना किसी महात्मा से, वो सर्व सिद्धा भक्ति होगी। अब ये धीरे धीरे उठ करके भगवान में पहुंचा देगी, इस चीज़ को सर्व सिद्धा भक्ति कहते हैं। और चीज़ें हैं, कोई संग सिद्धा है और कोई आरोप सिद्धा है। हम लोगों को आरोप सिद्धा में नहीं फंसना चाहिए। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, आरोप सिद्धा भक्ति में हमें फंसा दिया और इसे ऊपर में उठा नहीं सकते, वो खुद ही फंसे हुए। इसलिए इस चीज़ को हमको समझ करके भक्ति में बढ़ना है। जो चीज़ें अर्थ के द्वारा होती हैं वो सर्व सिद्धा नहीं हो सकती, इस चीज़ को भी समझना है। मेटेरियल चीज़ है ना, सहयोगिता कुछ कर देंगे। एक आदमी जिसके पास में करोड़पति है अरबों खरबों उसके पास रुपया है, उसमें उसने 2 करोड़ रुपया दिया किस लिए, कि इससे हमारा इनकम टैक्स बच जाएगा, इसलिए 2 करोड़ रुपया दे दिया, 10 करोड़ रुपया दे दिया। उसका क्या बिगड़ा? अच्छा, वो है पक्का विषय, उसने दे दिया और उसे मंदिर, तो क्या हो गया, भक्ति हो गई? नहीं। भक्ति कैसे होगी? कुछ भी नहीं दिया, केवल हरे कृष्ण करा, तभी यह स्वरूप सिद्धा भक्ति। इस चीज को समझ, उसका देने का यही फल होगा, 10 जन्मों में एक सुकृति हुई जो उसे मंदिर बना, उसमें ठाकुर जी की सेवा हुई है, इस सुकृति से साधु संग होगा, साधु संग से फिर बढ़ करके धीरे 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 हरी कथा आएगी, फिर श्रद्धा आएगी, गुरु वैष्णव से दीक्षा हरि नाम लेकर के फिर वो श्रवण कीर्तन स्मरण करके ही आगे बढ़ेगा। इस चीज को अच्छी तरह से हम लोग को उसी, हाँ कुछ सहायक है, हमने फूल का बगीचा लगाया, उसका फूल का लेकर के ठाकुर जी को माला इत्यादि दे रहे हैं, कहीं से घी ले आए ठाकुर घर में दिया, इससे प्रदीप जले, ये भी भक्ति किस रूप में, सुकृति देने वाली, इससे शुद्धा भक्ति में क्रमशः अधिकार मिलेगा। किंतु यही अंतिम है, इसके बाद में है ही नहीं है कुछ, यहीं पर दोष हो गया, ऐसा नहीं, हम लोगों को उसी में नहीं फंसना है। सुकृति से आगे बढ़ करके शुद्धा भक्ति में, स्वरूप सिद्धा भक्ति में कैसे हमारा चित्त कृष्ण में लगे, जेन केन उपायेन कृष्णे मनोनिवेश, किस प्रकार से हम देखेंगे। 10 दिन हो जाने पर हम विचार करेंगे, 10 दिन में एक लड़का कखोगवह सीख लेता है, तो हमारा 10 वर्ष हो गया, इसमें हमारी भक्ति कितनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये विचार करेंगे कि नहीं। पशु नहीं विचार करेगा कि हम तो विचार करेंगे ना, 10 वर्ष में क्या हुआ हमारा, हमारा मन पहले जो श्रद्धा थी उतना है या कम गया या अधिक हुआ। यदि अधिक हो गया तो समझेंगे शुद्धा भक्ति की तरफ में चल रहे हैं। यदि हमारा किसी पर विश्वास नहीं रहा, वैष्णव पर, भक्ति पर, गुरु पर, तब तो फिर ये करके कर क्या हुआ, यदि उसको छोड़ ही दिया, एक वर्ष नहीं 20 वर्ष तक हम रहे और इन कामों को किया और फिर संसार में लुढ़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, आपने शुद्धाचरण नहीं किया। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कहाँ दोष और त्रुटि है, जैसे कि हम ऊपर बढ़ सकें। हमारा मन, हमारी आसक्ति संसार के चीज़ों को छोड़ करके कृष्ण के चरणों में लगी कि नहीं, इस तरह से धीरे धीरे ले आए। अब इसको आसक्ति हो गई, आसक्ति का लक्षण तो एक तो पतला है जी, हरि कथा में ऐसी उसकी रुचि हो गई। दूसरी तरफ में आसक्ति उस नाम में ऐसा हुआ, उस कथा के सुनने में ऐसी आसक्ति हुई, भगवान के स्मरण में ऐसा हुआ, उसके लिए